मुझे तो मसूद का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा।
क्यों?
जिस रात तुम हवालात में थे,
फिर
मैंने उसे फोन किया था। एक तो उसने सही तरीके से मुझसे बात नहीं की, फिर कहने लगा मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ, और फिर नहीं की। ऐसे ही मौकों पर तो इंसान को दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है।
वाकई
अब मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा।
हाँ, उसके बारे में मेरी भी कुछ इसी किस्म की फीलिंग्स हो गई हैं। उसका रवैया आजकल बहुत बदल गया है। ऑफिस में अक्सर हमारा एक दूसरे से झगड़ा रहता है। एक दो बार तो एक दूसरे से अलग तलग होने का सोचा। इस बारे में सोचना पड़ेगा। पहले इंजीनियर पैमान का मसला हल हो जाए, फिर मैं कोई फैसला करूंगा।
बस बहुत हो गया। इंजीनियर पैमान के मामले में भी होशंग और शिवा के मामले की तरह शर ही शर होगा। जहाँ भी दौलत और जायदाद का मामला आ जाए, वहाँ चोरी और कत्लो गारत गरीबी जरूर आ जाती है। तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम अगर परवाना को तलाश करना नहीं चाहते तो मेरा और दूसरों का वक्त क्यों बर्बाद की?
मामा, अब आप इस किस्से को खत्म करें। अब सब कुछ खत्म हो गया है।
क्या मतलब खत्म हो गया? तुम हमेशा एक तरफा फैसला करते हो। क्या तुमने परवाने की बात भी सुनी है? बिलफर्ज अगर उसने शादी कर भी ली है तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना? तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम तुमसे वाबस्ता है, नीमा करामती। उसका हक बनता है कि वो अपने बाप से मिले। तुम इतने संगदिल तो ना थे?
बेटा है, मुझे नहीं चाहिए मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए। आखिर मैंने कौन से आपको ताज पहनाए हैं जो मेरा बेटा मुझे ताज पहनाएगा? हाँ, बच्चे सिवाय मुश्किलात में इजाफा करने के और कुछ नहीं करते। मैं पहले ही बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। हाँ, नहीं तो
क्या हुआ सर?
कुछ नहीं, लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता जा रहा है। पता नहीं ये बालिश धर का लड़का मुझसे चाहता क्या है। अब तो उसने मेरे खिलाफ केस भी दायर कर दिया है, जिसमें मुझे जालसाज और फ्रॉडिया करार दिया है। अगर बात अखबार और मीडिया तक पहुंच गई तो फिर उसे दबाना मुश्किल हो जाएगा।
तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
उस बहरोज करामती और मिसेज पैमान को फोन करो और सबको यहां बुलाओ, हत्ता के उस लड़की बहरोज को भी जो करामती की साथी है।
उस रोज मैंने बहुत कोशिश की कि पुलिस स्टेशन आऊं, लेकिन यकीन जानो नहीं आ सका। एक बहुत अहम काम में मसरूफ था जो हम दोनों ही के मफाद में था।
ऐसा कौन सा अहम काम था कि तुमने मुझे हवालात में छोड़ना गवारा कर दिया?
सॉरी यार, लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैं कहां था तो इसका कितना फायदा हुआ तो तुम खुद कहोगे कि मैंने सही किया।
मसलन कहां पर थे?
अर्जुमंदी साहब के ऑफिस से फोन आया था कि उनके ऑफिस पहुंचे, क्योंकि हमारा टेंडर उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है। खुद अर्जुमंदी साहब कह रहे थे कि नीलामी में हमारी कामयाबी के चांसेस 90% तक हैं।
तुम्हारा वो आम काम ये था? ताज्जुब है, ताज्जुब है। किसी और ने तो रब्ता नहीं किया?
नहीं। अरे हाँ, वो साहब, क्या नाम है उनका? हाँ, जावेद ने फोन किया था।
जावेद, क्या कहा?
कुछ नहीं, बस उन्हीं नक्शों वगैरह के बारे में पूछ गछ कर रहा था। फजूल किस्म की। कहाँ जा रही हो?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो?
मैं मामा के पास जा रही हूँ, कुछ काम है।
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो साथ चलें। मैं भी मिल लूंगा अपने होने वाली सास से। जानती हो मैंने कब से अपनी साबिका चाची को नहीं देखा।
अभी नहीं, अभी मुझे अकेले जाने दो।
क्या मतलब?
इसरार मत करो, मामा तो वैसे ही तुमसे चिढ़ती हैं। इन हालात में मुझे अकेले ही जाना होगा।
क्या मतलब वो मेरे नाम से चिढ़ती हैं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा चचा जाद हूँ। जल्द ही हम शादी करके तुम्हारी माँ के पास जाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ तुम मुझे हरी झंडी दिखा दो कि अब चलते बनो। हाँ,
जो तुम्हारी हरकतें हैं ऐसे में कुछ बैठ भी नहीं।
अच्छा,
देखो फिर भी अगर तुम्हें कोई मसला है तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि ना तो हमारी शादी हुई है और ना ही हम अमेरिका गए हैं। कामरान, मामा हमारी शादी की सख्त मुखालफत करती हैं।
इतनी आसानी से? सुनो बहनोश, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मामा मुखालिफ हैं तो हुआ करें, क्या तुम्हारा अपना कोई फैसला नहीं है? हाँ,
मैं उनकी किसी बात को रद्द भी तो नहीं कर सकती। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो, वो मेरी माँ है।
देखो बहनोश, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने तुम्हारी तमाम शराइत पूरी की ताकि हम शादी कर सके। अगर रोज तुम्हारी राय बदलती रही तो मैं खूब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है, समझी?
अच्छा तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। उनसे कहूँ कि मेरे चचा जात के बारे में कोई राय न दें।
मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, बस इतना जान लो जिस तरह मैं बर्बाद हुआ हूँ तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, समझ गई? याद रखना।
तो ये थी सारी हकीकत जो मैंने आपके गोशा गुजार की। दरअसल मैं और मेरी कंपनी इस फैक्ट्री को ख़रीदने और इसको बखूबी चलाने की अहलियत नहीं रखते। हमने मुनाफिकत की, आपको और अर्जुमन साहब को धोखा दिया। झूठ क्यों बोलूं? उस वक्त मेरा असल मकसद सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और दौलत का हुसूल वगैरह था, लेकिन अब सच्ची बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अर्जुमंदी साहब,
जनाब करामती साहब, आपकी ये सदाकत और शुजात अपनी गलतियों का एतराफ नहायत काबिल कदर है। मुझे अच्छा लगा जो बातें आपने अभी की, अब अगर वो हकीकत पर मबनी हो भी और हमने धोखा खा भी लिया हो, तब भी आपकी इन बातों ने जो आपने अभी की आपको हमारी निगाह में पहले से कहीं ज्यादा मोहतबर और मोहतरम कर दिया है।
बहरहाल अगर मेरी बातें काबिल एतबार हों या मैं खुद काबिल एतमाद हूँ, तब भी ना कोई जमानत है और ना ही कोई सलाहियत। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने हमारी कंपनी को दिलवाया है उसे मंसूख कर दीजिए।
मैं तो अब इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि मेरी ये इकलौती बेटी वाकई पागल है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, हर रोज एक नई शख्सियत है तुम्हारी। एक दिन कामरान के साथ शादी करने का वादा करती हो तो दूसरे दिन उसे तोड़ देती हो, कभी खुदकुशी करती हो, फिर पछतावा हो जाती हो। तुमने तो जिंदगी को मजाक बना रखा है, आखिर तुम चाहती क्या हो?
कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग इस पागल दीवाने का पीछा छोड़ दें। बस इस पागल को इसके अपने हाल पर छोड़ दें। आखिर आप लोग मुझे अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ते हैं ताकि मैं सुकून पाऊं? ना आप, ना मामा, ना कामरान मुझे छोड़ते हैं।
ठीक तो कह रही है वो शफी, इतना उसे तंग मत करें। आखिर आप क्यों नहीं समझते, इसको पुरसुकून माहौल की जरूरत है। जब हर रोज इसके लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा तो लामहाला इसे फैसला लेने में दुश्वारी तो होगी ना।
ये सब इसकी माँ की आमद का नतीजा है, मैं इसे मनमानी नहीं करने दूंगा। जी कौन?
ये शफी साहब का घर है।
जी फरमाइए।
माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बेटी बहनोश से काम था।
आप?
मैं इंजीनियर पैमान की वाइफ हूँ, बहनोश मुझे जानती हैं।
हम किसी इंजीनियर पैमान वैमान को नहीं जानते।
कौन था, आपने उनसे ऐसे क्यों बात की?
कहाँ,
मिसेस पैमान एक बाइज्जत और मोहतरम खातून है और इनका मेरी माँ से भी कोई ताल्लुक नहीं है और इस वक्त इन्हें यकीनन कोई काम होगा तभी वो यहाँ आई हैं। मुझे जाना होगा।
महमूद, खुदा के लिए जरा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पैमान साहब आप कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम, माफ कीजिएगा आपको जहमत दी।
मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, असल में बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने खुद मुझे भेजा है कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं।
नहीं, कोई बात नहीं।
कुछ हो गया है क्या?
इंजीनियर जावेद मेरे शोहर के पार्टनर, उन्होंने फ़ोन किया था, नक्शों के बारे में पूछ रहे थे कि आपके पास है या करामती साहब के पास।
लेकिन वो नक्शे मेरे पास तो नहीं है।
जानती हूँ, लेकिन वो इसरार कर रहे थे कि वो तमाम अफराद जो इस मामले से ताल्लुक रखते हैं आज आधे घंटे के लिए उनके ऑफिस आ जाएं। इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ।
लेकिन मिसेस पैमान, मैं इस वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ।
प्लीज आप मेरे साथ चलें, वरना जावेद मेरे शोहर के तमाम एहसासों को जब्त करवा देगा।
लेकिन फिर आपको थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाए।
ठीक है, आप अंदर जाएं, मैं गाड़ी में इंतजार करती हूँ, आधे घंटे बाद आऊंगी।
अच्छा फिर, खुदा हाफिज।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम, पूरिया बात कर रहा हूँ, जहमत की माफी चाहता हूँ।
खैरियत, कोई मसला पेश आ गया?
अरे नहीं, वो मैं जॉब की तलाश में था, सोचा आपने हमेशा ही मेरा बड़ा साथ दिया है, अगर आपकी कंपनी में मेरे लिए कोई काम हो जो मैं कर सकूं तो शुक्रगुजार होगा। मैं चाहता हूं आपकी दी हुई रकम लौटा सकूं।
अरे यार पूरिया, तुम भी ना, खैर हमारी कंपनी तो खुद डामाडोल है।
बहरहाल मैं किसी को कह देता हूं कि वो तुम्हारे लिए
कोई काम देखें, ऐसा काम जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक
भी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैंने आपको बहुत जहमत दी। और हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दी है कि मुझे तहसील इल्म का दोबारा मौका दिया जाए।
बारकल्ला बारकल्ला, ये बेहतरीन अमल होगा जो तुम करोगे।
जरूर कोशिश करना। ठीक है,
एजुकेशन हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था।
मेरा शुक्रिया वो किस लिए भाई?
मैंने तो कुछ भी नहीं किया।
बल्कि मुझे तुमसे माजरत करनी चाहिए, इसलिए कि बाज दफा मेरा बड़ा सख्त रवैया रहा तुम्हारे साथ।
आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा इजाजत, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहिए।
नहीं यार, बहुत बहुत शुक्रिया, कोई काम नहीं। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी।
मैं भी कई दिनों से आपके पास आना चाह रही थी लेकिन नहीं आ सकी। मैं आपसे कुछ कहने आई थी, वक्त होगा आपके पास?
क्यों नहीं, प्लीज।
मैं ये बताने आई थी कि आप हक पर थे।
नहीं, हकीकत यह है कि मैंने अपने उस्ताद के साथ बुरा किया, बचपना दिखाया। अब इस वाक्य को 2 साल गुजर गए तब मुझे एहसास हुआ, वगरना उस्ताद आलमी एक मोमिन शख्स थे, उन्हीं की बातों ने मुझे मुनकलिब किया।
आप खुद को मलामत मत करें क्योंकि ये मेरे बाबा हैं जो अजाब में हैं। करामती साहब भी इस बात की तायद करते हैं, मैं भी तायद करती हूँ। मेरे बाबा के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती थी कि वो यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्ट से तरक्की करके वाइस चांसलर के अहदे पर पहुँच जाएं। यही वजह थी कि वो कहीं ज़्यादा पोस्ट किया करते थे अपने एतकादात से। उनकी ज़िंदगी में दौलत की बड़ी अहमियत थी लेकिन ज़ाहिर ऐसा करते थे जैसे उनकी निगाह में दौलत की कोई अहमियत ही नहीं। आप जानते हैं, जब आप इस किस्म की बातें करते थे तो आपका एक ही क्लॉज मुझे हथौड़ा बनकर लगता था। लेकिन मैं आपसे कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि बाहर हाल वो मेरे वालिद थे। लेकिन अब मैं अपने वालिद के उन तमाम तौहीन-आमेज़ रवैयों और जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ़ कर देंगे क्योंकि अब वो बेबस और लाचार हैं। अगर आप उन्हें माफ़ कर दें तो आपका ये मुझ पर बहुत बड़ा एक एहसान होगा। शुक्रिया। इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगी। खुदा हाफिज।
आखिर मैं कौन होता हूं किसी को माफ करने वाला?
برج صدف سے میری ورکشاپ پر فون آیا تھا۔
اچھا، فون آیا تھا، کیا کہا انہوں نے؟
کچھ نہیں، بس یہی کہ میں برج صدف پہنچ جاؤں۔ جاوید مجھ سے سمجھوتے کے لیے تیار ہے، بس اسی قسم کی باتیں۔
اچھا، ایسا کیا کہا ہوگا کہ وہ خبیث شخص سمجھوتا کرنے پہ راضی ہو گیا؟ تو پھر کیوں نہیں گئے؟
دراصل اس نے ایک شرط رکھی۔
شرط؟
اس نے کہا ہے کہ میں نقشے لے کر آپ کے ساتھ وہاں آؤں۔
اچھا، مجھے ذرا سوچنے دیں۔ تو پھر اس نے مجھ سے خود رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ارے ہاں، کیا تو تھا، لیکن میں یہاں نہیں تھا۔
کیا کہا تھا اس نے؟
کچھ نہیں، دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ میرے خیال میں دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ بظاہر کافی غصے میں تھا۔
لیکن میرے ساتھ تو اس نے اچھی طرح بات کی۔ میں تو آپ کی وجہ سے مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب آدھے راستے میں ہوں، چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔
ارے بھائی، میں نے منع تو نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اچھا تو کب جانا ہے وہاں پر؟
اس وقت ہمیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔
کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ اگر آدھی رات بھی ہو جائے تو بھی وہ ہمارا انتظار کرے گا، بے فکر رہے۔ اب سوچ کیا رہے ہیں، چلیں، آئیے چلیں۔ چلیے۔
آپ جانتی ہیں، جب سے سلیم زادہ صاحب ہوش میں آئے ہیں میں کافی پر امید ہو گئی ہوں۔ جب آپ اور کرامتی صاحب میرے گھر آئے تھے اور برج صدف کے بارے میں باتیں کی تھی، مجھے لگا کہ شاید آپ لوگ جاوید صاحب کی طرف سے آئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیمان اور جاوید نے کیا کیا ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اس برج صدف کی سرمایہ داری میں جاوید نے پیمان کو دھوکہ دیا تھا۔ بیچارے پیمان، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب بیچ کر انہوں نے اس برج پر لگا دیا تھا، اور اب اس کا سارا منافع جاوید اٹھا رہا ہے۔
تو کیا یہ برج پورا جاوید صاحب کے نام ہے؟
مجھے نہیں معلوم، ان کا تو یہی کہنا ہے۔ ان کے پاس پیمان کے کچھ بلینک چیکس بھی ہیں۔ جب آپ نے مجھ سے بات کی تو میں نے سوچا کہ ان یتیم بچوں کا حق انہیں دلواؤں گی۔ جب میں نے اس مسئلے پر جاوید صاحب سے بات کی تو پہلے تو وہ ہنسے، پھر انہوں نے خوب دھمکیاں دی مجھے۔
آئیے۔
ارے السلام علیکم، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
وہی جو آپ کو کرنا ہے۔
السلام علیکم کرامتی صاحب۔
وعلیکم السلام، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ پیمان صاحب کی حالت اب کیسی ہے؟
ویسی ہی ہے۔
یہ احوال پرسی بات کے لیے اٹھا رکھے، پلیز بیٹھ جائیے۔
ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟
सच तो यह है कि मैं चाहता हूं कि आज इस किस्से को खत्म कर दूं।
माफ कीजिए जनाब, आप खरीदारी के सिलसिले में आए हैं या कोई और काम है?
खरीदारी के सिलसिले में भी और यहाँ के ऑनर से भी कुछ काम है।
आपकी मुराद जावेद साहब से है?
जी।
अच्छा तो इजाजत दीजिए, पहले सेक्रेटरी से बात कर लूँ इस तरफ से। कहाँ गए?
मुझे अपने कुछ दोस्तों के जरिए पता चला है कि आप लोग धोखा दही, फ्रॉड और जमीन हथियाने के इल्जाम में मुझे अदालत में घसीटना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक बात नहीं। मैंने तो हर तरह से आप लोगों से तावुन किया है, ये इंसाफ नहीं है। मुझसे कहीं ज्यादा करप्ट लोग इस मुल्क में हैं, जो हर रोज नए तरीकों से माले हराम जमा करके मोटे से मोटे होते चले जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि आप मुझे जेल भिजवाने में कामयाब नहीं हो सकते।
आपसे किसने कह दिया कि हम ऐसा कुछ करने का इरादा रखते हैं?
आप लोगों का रवैया बता रहा है, आप लोगों ने मुझे वो नक्शे भी नहीं दिए। आए हम एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, मुझे वो नक्शे चाहिए जिसका एडवांस मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ।
एडवांस? कैसा एडवांस?
अब ये मत कह देना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या तुमने 2 करोड़ का चेक नहीं लिया?
मैंने आपसे कोई चेक नहीं लिया।
बंद करो ये ड्रामा। चंद रोज पहले मैं तुम्हारे ऑफिस आया था और 2 करोड़ का एक चेक मैंने तुम्हारे उस बिजनेस पार्टनर को दिया था और कहा था कि वो नक्शों के बदले में 2 करोड़ रुपए का चेक बतौर एडवांस तुम्हें दे दे। अब वो चेक लेने के बाद मेरे ही खिलाफ उसे इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये तो मैं बता दूं कि ये सब बेकार है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ये बताइए कि आपने वो चेक राजी को दिया?
पता नहीं क्या नाम था उसका, लेकिन वो एक लंबे कद का लड़का था, ऑफिस में सब उसकी इज्जत कर रहे थे।
ये मुमकिन नहीं।
मुमकिन नहीं, जरा ठहरो।
हेलो।
हेलो।
अरे आपने फिर फोन कर लिया?
हाँ कर लिया, लेकिन जरा होल्ड करना, इस बार तुम्हारा बॉस तुमसे बात करना चाहता है।
हेलो मसूद।
सरोज तुम हो? तुम वहाँ क्या कर रहे हो?
इसे छोड़ो, ये बताओ तुमने जावेद साहब से 2 करोड़ का कोई चेक लिया था? हाँ
हाँ
हाँ लिया था।
तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया?
हैं? मेरे भाई उसी दिन वो चेक मैंने तुम्हें दिया था,
याद नहीं?
बको मत मसूद, मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं है तुमने कब मुझे वो चेक दिया था।
मेरी जान, मैंने उसी दिन वो चेक एक नोट के साथ लिखकर मिस होशमंद के हवाले किया था कि वो तुम्हारी मेज पर उस फाइल के साथ रख दे, और अगले रोज उसी चेक का पूछा था तो उन्होंने कहा कि तुमने वो चेक रख लिया और फाइल पर साइन भी कर दिए।
बकवास कर रहे हो तुम, पेपर की हाँक रहे हो।
यानी वाकई तुम्हें वो चेक नहीं मिला?
जाहिर है नहीं मिला।
मिस होशमंद,
मिस होशमंद,
अफसोस कि वो चली गई, वरना उन्हें बताता कि मुझसे झूठ क्यों बोला।
इधर दो मुझे, धोखेबाज। अब जब तक के मुझे मेरे पैसे और नक्शे मिल नहीं जाते, तुम यहीं रहोगे, आप सब भी यहीं रहेंगे, कोई भी बुर्ज से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि मेरे पैसों और नक्शों का मामला हल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता कोई मुझे बेवकूफ बनाए।
तुम इस तरह से अपने जुर्म को मजीद संगीन कर रहे हो, और कुछ नहीं।
मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हमारी मीटिंग जरा तूलानी हो गई है, जब तक कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते बस इतना ही। अगर आप लोग अभी मुझे इन नक्शों का पता बता दें तो आप सब आजाद कर दिए जाएंगे, जिस चीज की इन्हें जरूरत हो वो दे दी जाए सिवाय मोबाइल के। मैं आपके फैसले का मुंतजिर हूँ, बेहतर होगा आप लोग मशवरा कर लें। ले जाओ इन्हें।
चलिए।
मिस मेहरदाद को मेरे पास भेजो। क्या हुआ, किसी ने कुछ बताया?
जी नहीं, लगता है उनमें से किसी को भी उन नक्शे के बारे में नहीं पता, और वो लड़का करामती भी मुसलसल चोरी हो गए का कहे जा रहा है, और किसी ने कुछ नहीं बताया।
करामती को लेकर आओ, सिर्फ करामती को, जाओ।
बाकी लोगों को बेहतर होगा जाने दें, किसी को भी नक्शों के बारे में कुछ नहीं पता है। इस मसले का ना तो मिसेस पैमान से कोई वास्ता है और ना मिस शफी से।
बैठो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद, देखो बरखुरदार, मैंने एक उम्र गुजारी है यहां। अगर इतनी आसानी से मैं तुमसे और तुम जैसों से फरेब खा लेता तो मैं इससे बहुत पहले ही यहां नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होता। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुराई नहीं की या की है। क्या बुरा किया मैंने?
हाँ, मेरे साथ तो कोई बुराई नहीं की, लेकिन अपने उस पार्टनर के साथ जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है और उन बेचारे यतीम बच्चों के साथ, क्यों नहीं बुरा किया है।
तुम्हें क्या मालूम पैमान ने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हें पता है, तुम जानते हो इससे पहले प्रोजेक्ट में तुम्हारे इसी पैमान साहब ने, कि जिनकी तुम इतनी हिमायत कर रहे हो, मेरे साथ क्या किया? एक बड़े पैसेज के कॉन्ट्रैक्ट को चंद साल पहले मुझसे छीना था। उसके पैसे भी लाख जतन के बाद उससे निकलवा सका था, लेकिन इस्माइल के बच्चों के मामले में मैंने कुछ नहीं किया था। पैमान ने उन्हें ढूंढा था, फिर उन नक्शों की जाली कापियां बनवाई, मैं तो बस शरीक था।
लेकिन आपने उन्हें रोका भी नहीं, आपने भी उन बच्चों को धोखा दिया।
ठीक है, मैं अपने हिस्से के मुताबिक उन्हें उनके पैसे देने को तैयार हूँ।
तो ठीक है, फिर आप...
नहीं, सबर करो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुझे पहले तो वो नक्शे चाहिए, दूसरे ये कि आप लोग मुझे तहरीरी इजाजत नामा देंगे। आपको अपना केस भी वापस लेना होगा, और फिर हम किसी तौर एक दूसरे से समझौता कर लेंगे, और हाँ, उस 2 करोड़ के चेक का मामला भी क्लियर होना चाहिए।
जावेद साहब, आप असल हकीकत जानना चाहते हैं?
हाँ यकीनन, इसीलिए आपको बुलवाया गया है।
मुझे उस चेक के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि आप मेरे ऑफिस आए होंगे और मेरे पार्टनर को चेक भी दिया होगा। अब या तो मेरा पार्टनर झूठ बोल रहा है या मेरी सेक्रेटरी मुझे धोखा दे रही है। अलबत्ता मैं अपनी सेक्रेटरी की धोखाधड़ी को बईद समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं इस चेक वाले मामले की तह तक पहुँच ही जाऊँगा। आपके इत्मीनान की खातिर मैं अपने अकाउंट से 2 करोड़ रुपये का एक चेक आपके लिए लिख दूंगा, ठीक है?
अच्छा, फिर उन नक्शों का क्या होगा, ये भी क्लियर कर दो।
वो नक्शे मुझसे छीन लिए गए हैं, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, बेहतर होगा आप यकीन कर लें।
नहीं, हरगिज नहीं, मैं यकीन नहीं करूँगा। चेक वाले मामले तो मैं यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि वो रकम तुम मुझे अपने अकाउंट से अदा करोगे। मेरा तजर्बा मुझे बताता है कि तुम चेक से वाकई बेखबर हो, ठीक है? और वही तजर्बा मुझे ये भी बताता है कि जब तक वो चेक मैं तुमसे ले ना लूं, तुम्हें जाने ना दूं। अलबत्ता नक्शों के मामले में मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम झूठे हो और तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुमने नक्शों की फोटोकॉपी मेरे लिए भिजवाई एक अनजान शख्स के हाथों, ताकि पहचाने ना जा सको। फिर 2 अहमकों को ब्लैकमेलिंग और जासूसी की गरज से मेरे पास भेज देते हो, और फिर बुर्जे सदफ के एक इंजीनियर से हासिल करदा मालूमात के बलबूते पर चाहते थे कि ये साबित करो कि ये इमारत जलजला प्रूफ नहीं है। ये सब
नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप खुद से ही ख्यालबाजी और कयास आरइयां कर रहे हैं। मैंने किसी को आपके पास नहीं भेजा। मेरा मकसद हरगिज ब्लैकमेलिंग था ना है, और ये अजीब और गरीब बातें हैं जो आप बयान कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। देखिए जनाब, मेरी नीयत साफ थी, मैं सिर्फ आपके पार्टनर की हलालियत तलबी के लिए आया था, वरना अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आया होता तो तब भी मैं यही करता।
देखो, मुमकिन है मैं तुम्हारी नजर में बहुत बुरा हूँ, लेकिन मेरे काम में धोखा दही नहीं, बेपरकी मैं नहीं हाँकता। वो नक्शे किसी के काम के नहीं, सिवाय आप लोगों के जो उसकी अहमियत से आगाह हैं। हत्ता के वो मिस शफी जो आपकी नजर में बेकसूर है, मेरे ख्याल में मुमकिन है लालच में आकर वो भी कुछ लोगों को खरीद सकती हैं, जैसे तुम बहरोज मैकेनिक। अच्छा ये बताओ, तुम फरामर्स और कामबीज नामी आदमियों को जानते हो? हाँ,
फरामर्स, हाँ हाँ, लेकिन दूसरे को नहीं जानता, वो गैर कानूनी काम करता है।
अब क्या कहते हो?
मैं यही कहूंगा, वो मेरा काम नहीं है। यकीन करें, मैं उस बंदे को बहुत अरसे से जानता हूँ।
मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारी इन फजूल बातों का यकीन कर लूंगा। यानी हाल ही में तुमने इन कमीनों को नहीं देखा?
क्यों नहीं, क्यों नहीं। इत्तेफाकन मेरे पार्टनर से आजकल उसकी काफी गाड़ी छनने लगी थी, एक दफा मैंने उसको अपने ऑफिस से भी निकलवाया।
इन बातों से मुझे कोई गर्ज नहीं, ये कि तुम उन्हें जानते हो मेरे लिए काफी है।
ये बताइए जिनका इस वक्त बता रहे हैं वो कहाँ?
मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है, इस वक्त हवालात में है।
मुझे यकीन है वो जानते हैं कि नक्शे कहाँ है।
बको मत, यानी वो तो जानते हैं कि नक्शे कहाँ है, तुम नहीं जानते।
देखिए जनाब, अब तो मेरी जबान पे कांटे निकल आए हैं ये बताते बताते कि इन नक्शों को मुझसे छीन लिया गया है। लेकिन फरामस जो यहां तक आ पहुंचा है ये मेरे शक को मजीद बढ़ाता है। यकीनन किसी और के इशारे पर वो यहां आए हैं, वही जिसके पास आपके 2 करोड़ का चेक भी है। सोचे जरा।
कोई बात नहीं, खुदा हाफिज।
करामती साहब कहाँ गए?
जी आए थे लेकिन जल्द ही चले गए।
कुछ बताया नहीं कब लौटेंगे?
नहीं कुछ नहीं बताया।
नादिर कहाँ है?
वो अभी नहीं आया है, यानी बाहर गया है, कहा था कि 12 बजे तक आ जाऊँ।
लेकिन इस वक्त तो 3:30 बज रहे हैं। कहाँ थे?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है।
मैं बाहर गया हुआ था, क्यों, क्या टाइम हो गया?
3:30।
नहीं, 2:30 बज रहे हैं।
भले मानस, 2 महीने हो गए लोगों को अपनी घड़ियां आगे किए हुए।
हाँ मालूम है, आप नए टाइम के हिसाब से कह रहे हैं।
अब तुम मुझसे नए और पुराने टाइम पर बहस करोगे?
जनाब मैं चकरा जाता हूँ, आखिर ये क्या बात हुई, कभी घड़ियां आगे कभी पीछे, मैं सही कह रहा हूँ ना?
अच्छा ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो गौर से सुनो। आज मेरे पास 2-3 अहम क्लाइंट आने वाले हैं, जो कोई भी आयल करामती साहब का पूछे तो उन्हें सीधे मेरे पास भेजना है, समझ गए? या फिर कोई गड़बड़ करने का इरादा है?
नहीं जनाब, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जो भी आकर आपका पूछेगा मैं उसे करामती साहब के पास भेज दूंगा।
तो नहीं समझे? अरे मैं कह रहा हूँ क्लाइंट्स आएंगे यहाँ मिस होशमन के पास, तो मिस होशमन से कहेंगे कि हमें कंपनी के मालिक करामती साहब से मिलना है, तो मिस होशमन उन्हें सरोज के कमरे में भेज देंगी।
हाँ?
जब तक क्लाइंट्स यहाँ पर होंगे मैं करामती साहब हूँ, आया समझ में?
ये करामती साहब हैं, समझ गई आप?
शाबाश, आप भी समझ गई या फिर आपके लिए वही तकरीर करूँ?
जी जी बिल्कुल,
मैं तो सब समझ गया।
कौन है?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बहनोज से कहो 2 मिनट के लिए दरवाजे पर आए, मुझे कुछ काम है।
तुम
नहीं पहचाने?
बहनाज। बहनाज?
तुम्हारी बेटी की माँ।
बहनोज घर पे नहीं है।
तुमने अब तक सच बोलना नहीं सीखा है, हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। से कहो दरवाजे पर आए, मुझे उसे जरूरी काम है।
तुम्हें बात समझ नहीं आती?
कहा ना
कि वो घर पे नहीं है।
मुझे तो बात समझ में आती है, लेकिन शायद तुम नहीं चाहते कि मामला खैर आफियत से सुलझ जाए। इतने अरसे मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा, अब जबकि मैं दरवाजे पर आई हूँ तो मुझे परेशान कर रहे हो।
अगर चाहो तो तुम घर के अंदर आकर देख सकती हो, वो नहीं है।
जी नहीं शुक्रिया, मैं तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूंगी। बहनोश से कहो दरवाजे पर आए, अगर वो नहीं आई तो मुझे मजबूरन पुलिस से मदद लेनी पड़ेगी।
जाओ जो तुम्हारे दिल में आए वो करो।
ठीक है,
जाओ जाओ जाके पुलिस को ले।
ठीक है।
करामती साहब नहीं है।
पहले आप तशरीफ
होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
करामती साहब आपका फोन है।
कोई फोन नहीं मिलाएंगी, तमाम स्टाफ से कह दें कि आज ऑफिस बंद है, सब जा सकते हैं। नादिर साहब उठे, चाय लाए हमारे लिए।
राजी साहब माफ कीजिए, करामती साहब कैंटीन बंद है, माह रमजान जो है।
तशरीफ लाइए सलीमी साहब, तशरीफ लाइए। अच्छा तो सब कुछ तैयार है, रजिस्ट्रेशन के लिए कल का तय किया है, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए गए हैं, अब सिर्फ कीमत और उसकी अदायगी का तरीकेकार तय करना है, और कागजात की मुंतकली का काम बाकी रह गया है, बस इतना ही काम है।
मैंने आपसे अर्ज किया था अगर मुमकिन हो तो मैं कीमत 2 किस्तों में अदा कर दूं, लेकिन गालबन आपका इसरार है कि तमाम रकम की अदायगी यकमुश्त कल ही कर दी जाए।
जी माजरत चाहता हूं, दरअसल मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से है, वरना कोई मसला नहीं था जनाब।
कोई बात नहीं, अगर आप कोऑपरेट करें तो हम भी यकीनन कोऑपरेट करेंगे। कल के लिए शायद मेरे अकाउंट में 30 करोड़ तो होंगे ही, बाकी बचेंगे 6 करोड़। तो फिर आप हमारे साथ रियायत बरतेंगे या फिर हमसे चेक की सूरत में ले लेंगे?
नो प्रॉब्लम, आप फिलहाल ये 30 करोड़ रुपए कैश या डॉलर वगैरह की सूरत में जैसा आप चाहें अदा कर दें। रही बाकी रकम तो वो आप चेक की सूरत में हफ्ते या 15 दिन की तारीख डालकर दे दीजिएगा। देखें शायद यूं मसला हल हो जाए और तमाम मामला सेट हो जाएं। और जैसा आपको बेहतर लगे।
एक हफ्ते की तारीख तो नहीं डाल सकता, अलबत्ता चेक पर मैं अगले 20 रोज की तारीख डाल दूंगा।
ठीक है, मंजूर है। अब इतना कोऑपरेट तो हमें करना ही होगा सलीमी साहब।
हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई करामती साहब।
आपकी जरा नवाजी है।
तो फिर डन है, कल सुबह 10:30 बजे मिलते हैं, ठीक है?
जी डन है। अच्छा तो सलीमी साहब, अपनी दीगर मसरूफियात के बारे में कुछ बताइए। आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, शायद हम भी आपके किसी और काम आ सकें।
ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी करामती साहब कि हम आपके किसी काम आ सकें।
अरे नहीं, ये तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात होगी।
ये बताइए, आप लोगों ने किसको बताया था कि कहां और किससे मिलने जा रहे हैं?
मैंने तो किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था, और अगर बताया भी हो तो कौन सा कोई जावेद को जानता है।
मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया है। क्या बेवकूफी की मैंने, मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे।
जी अब तक तो सभी परेशान हो गए होंगे और पुलिस को इतला भी कर दी होगी, लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि हम कहां हैं?
आपके बिजनेस पार्टनर हैं राजी साहब, वो जानते हैं, आपने उनसे भी तो बात की थी।
फिलहाल तो असली प्रॉब्लम वो खुद ही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा।
यानी वो हमारे साथ क्या करना चाहते हैं?
ये सारी मुसीबतें आपकी वजह से हैं। मैं तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मुझे तो दौलत की भी जरूरत नहीं। तुमने ही इस मुसीबत में हमें डाला था, अब तुम ही इस मुसीबत से हमें निकालो। उन मनहूस नक्शों का पता बताकर हमारी जान छुड़ाओ।
बहुत कम हिम्मत हो, बहुत ज्यादा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे। मुझे अगर उन मनहूस नक्शों के बारे में कुछ पता होता तो अब तक मैं वो उसके मुंह पर मारकर यहाँ से जा चुका होता, और इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ बैठने पर मजबूर ना होता। फिर रह जाए तुम, तुम्हारा खुदा और उन यतीम बच्चों का हक।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस लड़ाई झगड़े से हासिल क्या होगा? हमेशा के लिए तो कैद नहीं कर सकते, कभी तो छोड़ेंगे।
आप लोगों ने अभी जावेद को पहचाना नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो चाहता था कि मेरे शोहर की तमाम दौलत हथिया ले, ताकि मैं और मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएं। वो बहुत घटिया इंसान है।
ओ जावेद, जावेद लानती, मिसेस पैमान को जाने दो। इनके बच्चे इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके शौहर बीमार हैं। तुम समझते क्यों नहीं?
उन पर काबू रखो, उनके सामने खुद को कमजोर मत जाहिर करो, समझे? मुझे नक्शों की असल जगह मालूम है, मगर मेरा अंदाजा है।
तो बताकर हमें निजात क्यों नहीं दिला देते?
क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचे। वो नक्शे फ्रामर्स नामी शख्स के पास हैं, एहतमालन उसी ने वो नक्शे छीने होंगे, और जब वो जावेद के पास आए होंगे तो जावेद ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया होगा, क्योंकि खुद इसका और इसके चेलों का साबिका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। लेकिन असल शख्स जो इन नक्शों की जगह जानता है और ये सारा गेम खेल रहा है, वो मसूद मेरा पार्टनर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मसूद, अगर मैं यहाँ से बाहर आ गया।
राजी साहब, आपको यकीन है?
90%, क्योंकि अब तक पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। फिर ये कि पहले मुझसे झूठ बोला कि चेक मैंने तुम्हें दिया था, फिर कहा कि तुम्हारी सेक्रेटरी को दिया था, ये मेरे शक को यकीन में बदल रही है। मसूद पैसों के मामलात किसी से डिस्कस नहीं करता था, वो डायरेक्ट मुझसे ही डिस्कस किया करता था। और फिर जावेद के मेरे ऑफिस आने के बाद वो कई बार मुझसे मिला, लेकिन उसने चेक का कोई तस्करा नहीं किया। और फिर आजकल उसकी फ्रामर से काफी गाड़ी छिनने लगी थी।
तुम बताओ अब क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सब कुछ तुमने जावेद को क्यों नहीं बताया?
बताया था, जावेद को भी सब पता है। अब तय ये पाया है कि कल वो अपना एक आदमी जेल भेजेगा ताकि उनकी जमानत कराए। जावेद को भी आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातों का यकीन आ रहा है।
तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मेरे बच्चे गम से निडाल हो चुके होंगे और शोहर मर चुका होगा। इस मामले में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होगा। उनको तो बैठे बिठाए करोड़ों की रकम हाथ लगेगी और मैं हर चीज से हाथ धो बैठूंगी।
मिसेस पैमान, हम सब इस वक्त जो यहाँ मौजूद हैं तो वो आपकी और आपके शौहर की वजह से हैं, वगरना ना मेरी कोई जमीन है और ना उस पर किसी जावेद का कब्जा।
आप लोग वाकई मुझ बदबख्त की वजह से इस मुश्किल में फंस गए हैं।
मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल सुबह आप अपने शौहर और बच्चों के पास होंगी।